Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक युवक बहुत ही दुखी रहा करता था अपने जीवन से। ऑफिस में भी प्रॉब्लम, घर में भी तकलीफें और शरीर भी उसका ठीक नहीं रहा करता था। उसे लगता था कि मेरे जीवन में इतनी समस्या ही समस्या है, कब ये समस्याएं दूर होंगी। एक काफिला आया हुआ था, उसमें एक फकीर बाबा आए हुए थे। अब उसने सोचा कि वहाँ जा करके मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोगों ने सुनाया कि वहाँ जाने से सभी की समस्याएं दूर हो रही हैं, बाबा बहुत अच्छी अच्छी युक्तियाँ बताते हैं, आप भी वहाँ एक बार जाओ। तो उसने सोचा कि मैं भी एक बार जाके देखता हूँ। जब वो उस काफिले में पहुँचा बाबा के पास, कहा कि मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं बाबा, कुछ युक्ति बताइए। तो बाबा ने कहा कि ऐसा है कि हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं और आज जो ऊँट को संभालता है वो बीमार पड़ा हुआ है। तुम आज इन ऊँटों को संभालो पूरी रात, मैं कल सुबह तुम्हें कुछ अच्छी युक्तियाँ बताऊँगा। लेकिन याद रखना कि तुम तभी सोना जब ये सारे ऊँट सो जाएँ या बैठ जाएँ कम से कम। अब सारी रात ये युवक लगा रहा, लेकिन सभी ऊँट तो बैठ ही नहीं सकते एक ही साथ में। सुबह जब बाबा जी आए, अब पूछा युवक से कि कैसी रही तुम्हारी रात, तुम्हारी रात अच्छी नींद में बीती? तो युवक ने कहा कि बाबा, ये तो सारे ऊँट एक साथ बैठे ही नहीं और आपने निर्देश दिया था कि जब सारे ऊँट बैठ जाएं उसके बाद ही तुम सोना। तो बाबा ने कहा कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है वास्तव में कि सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। तो युवक बड़ा नाराज हुआ, तो आपने मुझे ऐसा काम क्यों दे दिया था जब आपको पता ही था कि सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठेंगे। तो फकीर बाबा ने कहा कि देखो, इसके पीछे एक मर्म था। तुमने देखा होगा कि कुछ ऊँट जैसे ही शाम ढली वैसे ही बैठ गए, और कुछ लोग तुमने प्रयास किया कुछ ऊँट, उसके बाद वो बैठ गए, और कुछ ऊँट ऐसे थे जो बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठे, लेकिन अपने आप बाद में बैठ गए और कुछ बाद में खड़े भी हो गए। जीवन भी ठीक ऐसा ही है, समस्याएं भी ठीक ऐसी ही हैं, कुछ अपने आप बैठ जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जिनके लिए थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन पे लगातार मेहनत करते रहो लेकिन फिर भी वो नहीं बैठती, लेकिन एक समय आता है कि वो बैठ जाती हैं अर्थात समाप्त हो जाती हैं, और कुछ उठ ऐसी हैं अर्थात समस्याएं जो यदाकदा खड़ी होती ही रहती हैं। लेकिन यदि तुम उन्हीं के पीछे अपना सारा ध्यान देते रहोगे तो तुम चैन की नींद नहीं सो पाओगे। इसीलिए समस्याओं की ओर ध्यान ना देकर के उन चीज़ों की ओर ध्यान दो जो अच्छी हैं, जो तुम्हारी हित में हैं, जो तुम्हें आनंद प्रदान करने वाली हैं। आमतौर पे ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी समस्याओं पे ही फोकस्ड रहता है, उन्हें ही देखता रहता है और ये सोचता है कि ये समस्या कब जाए तो मैं सुखी हूँ। इसके बनिस्बत ये सोचना श्रेयस्कर है कि ईश्वर ने मुझे जीवन में क्या क्या दिया है, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं मेरे पास जिनका मैं सुख ले सकता हूँ, आनंद ले सकता हूँ। तो यदि तुम उधर से अपना ध्यान हटा के इधर अर्थात सुख की ओर लगाओगे, जीवन खुशहाल हो जाएगा। सुंदर सीख है ना मित्रों, कि हम भी लगातार कई बार समस्याओं के बारे में सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। परेशान ना हो, जो हमें ईश्वर ने अच्छी चीज़ें दी हैं, जिन्हें देख कर, जिन्हें याद करके हम सुकून अनुभव करते हैं, उनकी ओर यदि ध्यान देंगे तो वो जो ऊँट हैं समय आने पे बैठ ही जाएंगे, समाप्त हो ही जाएंगे। क्यों ना हम जीवन का जो बहुत ही छोटी सी जिंदगी है सुकून से जिएं, आनंद से जिएं, और यही प्रेरणा लगातार समाधान के माध्यम से प्रदा जी हम तक पहुंचाते रहते हैं। आइए आज की इस कड़ी में उनका अभिनंदन करते हैं और शुरुआत करते हैं समाधान की। प्रदा जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक्स।
एक दृष्टिकोण और नजरिया व्रता जी, ज्यादातर ऐसा हो गया है कलयुग में कि छोटी सी बात आती है तो हमारा सारा ध्यान वहीं चला जाता है और वो हमें परेशान कर जाता है, और जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो चीजें शायद हम भूल जाते हैं या वो चीजें छूट जाती हैं।
बहुत लोगों के साथ यही हो रहा है कि एक समस्या उनके मानस पटल पर पूरी तरह छाई रहती है और मनुष्य वो सब कुछ करना भूल जाता है जो उसे करना चाहिए, बल्कि अपने जो दैनिक कार्य हैं जो रोज वो करता है उसमें वो गलती करने लगता है और समाधान बिल्कुल भूल जाता है। ये ठीक है कि अगर वो मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करे, अगर वो इन समस्याओं से सारा समय रिएक्ट न करके कनेक्शन न जोड़े रखे अपना, मनुष्य बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। थोड़ा सा अपने को डिटैच करके अच्छे अभ्यास में रहेंगे, ये तो हैं भाई, ठीक है, ठीक हो जाएंगी, जैसे ऊँटों की बात थी, कोई खड़ी होगी कोई बैठेगा, ये सब ठीक हो जाएंगे, मुझे अपनी योग साधना को अवश्य चालू रखना है, तो निस्संदेह उसका जीवन सुंदर होगा और समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और एक ऐसा जीवन भी मनुष्य जी सकता है जिसमें देर इज नो प्रॉब्लम नो कंप्लेंट्स। हमें बाबा ये स्लोगन दिया करते हैं, न जीवन में कोई शिकायत रहेगी किसी के प्रति, न कोई समस्या रहेगी, ऐसा जीवन सचमुच बनाया जा सकता है। लेकिन हम उन अच्छाइयों की ओर, उन प्रैक्टिसेस की ओर ध्यान दें जो हमें करनी चाहिए।
बिल्कुल, एक आध्यात्मिक स्थिति का भी इसमें ब्रदर जी क्या बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। जैसे हम सुना करते थे कि भाई जो साधु संत हैं वो अपनी दृष्टि दी या उनकी उपस्थिति से ही सभी जीव जंतु बिल्कुल उनके कंट्रोल में आ जाया करते थे, उनका कहना मानते थे, बैठो तो बैठ गए, खड़े हो तो खड़े हो गए। वैसे ही क्या समस्याओं में भी ये आध्यात्मिक स्थिति मदद कर सकती है कि हाँ छोटी तो छोटी
सबसे ज्यादा करती है। अगर हम अपने वाइब्रेशंस बहुत अच्छे बना दें, अगर कणाद मुनि के आश्रम में शेर आकर शांति से बैठ सकते हैं उसके वाइब्रेशंस के कारण, तो हमारे वाइब्रेशंस के कारण भी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। बस बात यही है जैसे मैंने कहा कि हम अपने वाइब्रेशंस को छोड़े नहीं, छोड़ देता है मनुष्य, समस्याओं में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, उसी का चिंतन वही छाई रहती है उसके दिमाग में सदा, थोड़ा उनको हटाए और अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट करे तो बहुत सारी समस्या हमारे वाइब्रेशन से ठीक हो जाएंगी। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा
जी,
बहुत सारी समस्याएं मनुष्य के स्वभाव से क्रिएट होती हैं। घरों घरों की जो समस्याएं आती हैं, किसी की समस्या आ रही थी कि उसका पति उससे बात तो बहुत अच्छी करता है, मिलने भी आता है, लेकिन कहता है ये कि तुम मेरे से अलग ही रहो भाई, वो मिलिट्री में है, कहा साथ नहीं रहेंगे, बाकी सब ठीक ठाक है, पैसे भी देता है, खर्चा भी देता है। मैंने उसे पूछा कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, कहा मुझे गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा सास से, कहा सास की बात मुझे अच्छी नहीं लगती, वो कुछ भी करती रहती है, मेरी सुनती नहीं है, अपनी चलाती रहती है, मैं उसे कहती हूँ तो इग्नोर करती है। तो मैं समझ गया कि जो इसका पति है उसका माँ से बहुत प्यार है और ये उसे लड़ती है, तो उसने बेचारे ने एक सुंदर मार्ग अपना लिया, भाई माँ भी अलग रहे तुम अलग रहो, शांति रहे, मैं बीच बीच में आ जाया करूंगा, फोन भी कर लिया करूंगा, लेकिन रहो अलग, लेकिन इसको ये पसंद नहीं, साथ रहे सदा, क्यों नहीं साथ रहे, अब लड़ाई होती है। तो ये मैंने कहा
जी,
आप अपने स्वभाव को स्वीट क्यों नहीं बना देती, आपका स्वभाव जिस दिन स्वीट हो जाएगा आपकी सास भी और आपका पति भी आपको बहुत लाइक करेंगे। आप क्यों चाहती हो जैसा मैं चाहूं वैसा ही वो करे। अब सास पे आप बार बार क्रोध करेगी, वो बड़ी भी है, आप उसके घर में आई, पहली मालकिन वो थी, आप सेकंड मालकिन हो, तो कम से कम उसे सम्मान भी दो। मैंने उसे फिर एक सुंदर सी राय दी, तुम 15 दिन के लिए मेरी एक बात मान लो, अपनी सास को कुछ भी ना बोलना, जो वो करती है उसको करने देना, तुम अपने में मस्त रहना, अपने कार्य करना, देखना रिजल्ट क्या होता है। तो निश्चित रूप से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आज 2 लोगों को ही मैंने राय दी, घरों में इनके झगड़े थे। तो अनेक समस्याएं स्वभाव जनित हैं, स्वभाव से क्रिएट हो रही, संस्कार से क्रिएट हो रही, और मनुष्य स्वयं को बदलना नहीं चाहता। देखिए इस समस्या का समाधान बिल्कुल छोटा सा, ये स्वीट हो जाए, पति भी इसका, सास भी इसकी, बिल्कुल परिवार में कितना सुंदर माहौल हो जाएगा।
जी, जी,
बस इतना अगर मनुष्य कर ले तो बहुत सारी बातें सहज समाप्त।
लेकिन यही नहीं हो पाता ब्रदर जी, और व्यक्ति शायद ये मान बैठा है, जैसे कहते हैं ना कि क्या करें हमारी शक्ल ही ऐसी है, वैसे ही क्या करें हमारा स्वभाव ही ऐसा है, या क्या करें ये जो गुस्सा है वो जाता ही नहीं है। ये वाली समस्या हमेशा सामने आके खड़ी हो जाती है कि हम जानते हैं कि गुस्सा हमें आता है और ये अच्छी चीज नहीं है, परेशानी हो रही है, लेकिन जा नहीं रहा है।
बस मेरा स्वभाव ही ऐसा है, इस पर जरा गौर करें। ये सचमुच बहुत लोग कहते हैं, कहते नहीं तो मान लेते हैं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। जैसे वो कहा ना आपने कि भाई तुम रोते क्यों रहते हो, ऐसे मूड ऑफ सा रहता है, कि नहीं मैं तो खुश रहती हूँ पर मेरी शिकल ही ऐसी है, तुम्हें लगता है कि मेरा मूड ठीक रहता है, पर क्या करूँ भगवान ने शिकल ही ऐसे। कई लोग सोचते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। जरा गहराई से चिंतन करें, भी स्पिरिचुअल बन जाए, मेरा स्वभाव, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव तो पीसफुल है, प्योर है, लविंग है, सुखदाई है, ये मेरे स्वभाव हैं। अब मनुष्य इन स्वभावों को भूल के, मैं सुखदाई नहीं दूसरे मुझे सुख दें, मैं शांत नहीं मैं दूसरों की शांति समाप्त कर दूं, मैं पवित्र नहीं मैं तो वासनाओं के अधीन, इसको छोड़कर मैं आत्मा तो पीसफुल हूँ। देखिए स्पिरिचुअलिटी इन चीजों का समाधान है ना। और वो जो क्रोध मेरा स्वभाव बन गया है वो मेरा नहीं, वो तो माया की देन है, वो रावण की देन है, वो तो पराई देन है। मैं कहाँ, अगर मेरी वो चीज होती तो मैं क्रोध करके बहुत खुश होती कि वाह मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन क्रोध करने के बाद हर व्यक्ति परेशान होता है, उसकी एकाग्रता नष्ट होती है, उसका मन नहीं लगता,
वो पश्चाताप करता है।
उसने कुछ बुरा बोल दिया क्रोध में तो जीवन भर पछताता है, देखा मैंने यार क्रोध में ऐसा बोल दिया था, मेरी भावना तो ऐसी नहीं थी। तो इसको चेंज करें और इस प्रैक्टिस को अपनाएं कि मेरा स्वभाव तो पीसफुल है, बहुत लविंग है, प्रेम भरा, सुख देने वाला है। बस ये बढ़ाएंगे ना, वो संकल्प चेंज करें। सवेरे उठते ही 7 बार याद कर लें, मेरा स्वभाव प्रेम भरा, शांत, सुख देने वाला है। मेरा स्वभाव बहुत सुख देने वाला है, बहुत प्यार मेरे अंदर है, शांति गीतों में भंडार हूँ। 7 बार कर लें इस तरह सवेरे, गुड फीलिंग, धीरे धीरे स्वभाव बदल जाएंगे और ये जो समस्याएं हैं परिवारों की ये आधी तुरंत समाप्त हो जाएंगी।
बिल्कुल बिल्कुल, और अध्यात्म सचमुच इसमें बहुत ज्यादा मददगार है और एक दवा का काम करेगा, मुझे ऐसा लगता है। दादाजी फिर भी हमारे पास कुछ समस्याएं तो आती ही रहती हैं। पहली समस्या मैं ले रहा हूँ, कमला जी ने गुवाहाटी से हमें भेजा। ये कहती है कि मेरी 17 साल की बहुत होशियार तेजस्वी बच्ची 11वीं कक्षा में पढ़ती है, अचानक पढ़ाई नहीं कर रही है, पूछने पे कुछ बताती नहीं है, इतना ही कहती है कि बस अब मुझे पढ़ना नहीं है, कृपया कुछ समाधान बताएं। क्या पढ़ना ही नहीं है?
माँ को गर्व रहा माँ बाप को कि उनकी लड़की बहुत होशियार है, उसके टॉप मोस्ट मार्क्स आते होंगे तो चारों ओर वो बताते होंगे, नाम होता है, प्रचार कर देती है माताएं, तो देखो हमारी लड़की के इतने मार्क्स आए हैं। युवा वर्ग पर कुछ बुरे इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया था पीछे, एक 10वीं क्लास के पढ़ने वाला बच्चा बहुत क्रोध करता, पढ़ाई छोड़ दी, माँ बाप को मार पीट करता। अभी हमारे पास रहे 10 दिन, फिर परसों मेरे पास लाए थे, वो स्वीट हो गया है यहाँ के वातावरण में रह के। कहा नहीं अब मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करूँगा, मेरी गलती हुई और मैं पढ़ूंगा। मैंने उसे समझाया बिना पढ़े लिखो का क्या मान, मजदूरी करनी पड़ेगी तुम्हें, बीए तक पढ़ो, अच्छा पढ़ो, तुम अच्छे व्यक्ति बन जाओगे। बिल्कुल एकदम सौम्यता दिख रही थी उसके चेहरे पर। तो ऐसा आजकल युवकों में कई बार होता है, इसके कई कारण हो सकते हैं, इंटरनेट भी इसका कारण हो सकता है, किसी से उसका अफेयर हो गया हो वो भी कारण हो सकता है, और कुछ आजकल बाह्य इफेक्ट भी हैं। कई बच्चे ऐसे जो बिल्कुल मुक्त हैं हर चीज से, लेकिन कुछ बाह्य निगेटिव एनर्जी के इफेक्ट से उनकी ये बात हो गई है, पढ़ने में रुचि नहीं, हम तो नहीं पढ़ेंगे, या 10वीं क्लास में तो हाईएस्ट मार्क्स आए थे, अब 11वीं में जाते 50% रह गए, 12वीं में 40% रह गए, ये स्थिति बनती जा रही। इस माँ को चाहिए कि अपनी बच्ची के लिए रोज 1 घंटा योग करें। योग से जो अगर कोई निगेटिव एनर्जी उस पर काम कर रही है वो हट जाएगी। दूसरी चीज, इसको पवित्र भोजन खिलाए, भोजन बनाते हुए बारम्बार याद करें मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और जब उसको भोजन दे तब याद करे, संकल्प करे इस पवित्र भोजन को खाने से इसका चित्त पवित्र हो जाए। तो अगर कहीं वो गलत मार्ग पे चली गई है तो उसको अवेयरनेस हो जाएगी, नहीं अभी नहीं। साथ में मैं अपने सभी युवकों को ये कहूँगा, अब ये समय नहीं है, पढ़ाई पूर्ण करने के बाद कर लेना ना, अब टारगेट बनाओ अपनी पढ़ाई को, एक सुंदर लक्ष्य को तुम्हें पाना है, अपने भविष्य को बहुत उज्ज्वल बनाना है, ये सब चीजें तो चलती रहेंगी जीवन में। और तीसरी चीज इसे करनी है, जो एक बहुत सुंदर सबकॉन्शियस माइंड की पावर का प्रयोग है, सवेरे 5 बजे मेडिटेशन करने के बाद जब बच्ची सोई हो उसे आत्मा इमर्ज करके, ये आत्मा है, 5-7 मिनट तो उसको गुड वाइब्रेशंस दे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणें निकल कर उसे जा रही है, बार बार संकल्प करे मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, यहाँ से किरणें निकल कर उसे जा रहे हैं। 1 मिनट में एक बार ये अभ्यास कर ले, 10 मिनट कर ले, फिर माइंड टू माइंड उससे बात करे, यानी उसको कुछ अच्छे थॉट्स दे जो उसे कहना चाहती है, जैसे तुम्हारा विद्यार्थी लाइफ इज द गोल्डन लाइफ, ये गोल्ड समान है, डायमंड समान है, अब तुम्हें अपने भविष्य को सुंदर बनाना है, तुम बहुत अच्छी हो, अरे तुम तो देव कुल की हो, तुम तो हमारे कुल का दीपक हो, तुम पढ़ो, पढ़ाई तो तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्टिंग चीज है तुम्हारे लिए, पढ़ो, इसमें रुचि लो, तुम बहुत अच्छी हो। रोज सवेरे 7 दिन तक रेगुलर करें, जरूरत पड़े तो 21 दिन करें, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड जो उस समय जागृत है, जब वो सोई हुई है, वो इन संकल्पों को रिसीव करने लगे और उसके अंदर में ये चेंज आएगी 2-4 दिन में ही। ये पाएंगे कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए, मैं किसी गलत मार्ग पे चली गई हूँ, ये सब क्या हो रहा है, बस धीरे धीरे वो ठीक हो जाए।
मतलब ये जागृति हम अध्यात्म और मेडिटेशन के माध्यम से ला सकते हैं। क्या पता जी, वहाँ पे भी स्कूल में या उनके फ्रेंड्स से भी क्या ऐसी एक बार चर्चा इनके पेरेंट्स को कर लेनी चाहिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? संभवतः कई बार स्कूल में या किसी साथी के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई होती है तो बच्चे उखड़ से जाते हैं कि नहीं, अब शायद हम उस चीज को फेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं जाते।
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये किसी गलत मार्ग पे नहीं होगी, वो तो मैंने एक जनरल बात कही, क्योंकि अन्यथा कहती मैं तो वहाँ जाऊंगी, ये कहती है मैं नहीं पढ़ूंगी,
ये तो अटैचमेंट जहाँ होता है वहाँ वो जाते
तो
ही
है। जाता है
जी, जी।
तो मुझे ऐसा लगता है आपने ठीक बात कही कि उसके साथ कुछ गलत हो गया है और उसको, इनको ठीक करना जरूरी है। हो सकता है उसके माइंड पे किसी घटना का बुरा प्रभाव हो गया हो, किसी साथी ने उससे मिसबिहेव कर लिया हो, या किसी टीचर ने उससे कुछ मिसबिहेव कर लिया हो। आजकल गंदगी बहुत है दुनिया में, तो जरूर ये बात ठीक है कि वो जाएं और इंक्वायरी करें और ठीक करें बातों को। तो इसमें अगर डर हो गया है तो वो भय भी निकल जाएगा और पुनः जागृति आएगी।
बिल्कुल। और दूसरी जो सबकॉन्शियस माइंड की, या आप एक बात कह रहे हैं ब्रता जी, कि एक ऐसा माहौल बन रहा है, तो हमारे पास जबलपुर से भी फोन आ रहा था। दोनों ही माता पिता दोनों ही डॉक्टर हैं, लेकिन बेटा 12th का पिछली बार भी एग्जाम दिया था, वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद वो कहता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, तो प्राइवेट भी उसके लिए वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैं एग्जाम दूंगा तो दूंगा, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। फिर आगे वो कहते हैं कि आगे तुम्हें करना क्या है, वो कहता है अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, जब मैं डिसाइड करूंगा तो बताऊंगा। तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि इनका फ्यूचर क्या होगा, यदि ऐसी कंडीशन है तो क्या कुछ किया जाए।
हाँ नहीं है, पेरेंट्स का परेशान होना तो लाजमी है, न केवल उनका फ्यूचर बल्कि समाज भी तो है उनके चारों ओर।
जी जी, जी, जी बेटा क्या कर रहा है,
दोनों तो डॉक्टर, इनका लड़का देखो नालायक निकल गया। लोग तो कुछ भी कहते हैं, कहने वालों को तो
रोका नहीं जा,
नहीं मौका चाहिए, जिसका नाम बहुत होता है उससे जरा सी गलती हो, कुछ परिवार में हो, तो बोलने वाले सोचते हैं वाह मजा आ गया, अभी तो मौका मिला हमें बोलने का। इस पर भी यही प्रयोग इसकी माँ को कर लेने चाहिए, थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस से समय निकाल कर अपने बच्चे से प्यार से बात भी करें, उसको प्यार भी दें, खाने पे उसको साथ बैठाएं और देखें, देख भी लें कि वो कहीं गलत राह पे तो नहीं चला गया है, कि इंटरनेट में ज़्यादा समय तो नहीं देने लगा है, कुछ और चीज़ तो नहीं देखने लगा है। और सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करें, जो 5 बजे की मैंने बात कही, उसके लिए ये बहुत बिजी हैं, तो आधा घंटा योगदान अवश्य करें। क्योंकि मैं एक बात अपने दर्शकों को बहुत पहले से 1-1.5 साल से कहता आ रहा हूँ, वो ये है कि ये कलयुग का जो अंतिम काल आ गया है, इसमें सभी के अंदर के विकर्म और बुरे संस्कार जो हजारों साल के रहे हैं, वो जागृत हो रहे हैं। तो बहुत युवकों के साथ ये हो रहा है कि अचानक मन उछटा उछटा सा नहीं मन लग रहा, एकदम दुनिया से वैराग जैसा। ऐसा ही नहीं सभी युवक कोई गलत मार्ग पे ही जाते हों, ये अंदर से उनके अंदर की जो बात है निगेटिविटी, वो इमर्ज हो रही है। अब इसमें मेडिकल तो इसका कोई उत्तर नहीं दे सकती, साइकोलॉजिस्ट भी इसमें, साइकेट्री कुछ कर नहीं पाएंगे। इसमें ये जो स्पिरिचुअलिटी हमारी है, योगदान, उनको प्यार देना, उनको स्वमान की बात खुद भी सिखाई जा सकती है, तो वो जो बैड एनर्जी अंदर से जागृत हो रही है उसको समाप्त किया जाए, और तब ये बच्चे फिर से फ्रेश होंगे और एनर्जेटिक होंगे, इनमें उमंग उत्साह आएगी और कुछ करने के लिए तैयार होंगे।
क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के ब्रदर जी जो फोन या ईमेल अभी आ रहे हैं वो ऐसे ही, क्योंकि परीक्षा का भी माहौल है, तो वो यही कहते हैं कि ये ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, या पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, या बैठते भी हैं तो एकाग्र नहीं हो पाते। तो ये वाली समस्या भी ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों की,
बिल्कुल, ये एकाग्रता की समस्या तो बहुत आ रही है, रोज 2-4 केस ऐसे आते हैं, 10वीं क्लास के बच्चे, 12वीं क्लास के बच्चे, ये बहुत कहते हैं कि पढ़ना चाहते हैं पर एकाग्रता नहीं हो रही, सवेरे से ही तो पढ़ रहे हैं, बोर हो गए, कुछ भी तो याद नहीं, जैसे ब्लैंक है सब कुछ, पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं है। ये वही चीज है, कलयुग के नेगेटिविटी का, बैड एनर्जी का इफेक्ट कई युवकों पर होता जा रहा है। इसलिए अपने घरों में स्पिरिचुअल माहौल बनाए रखना, और माँ बाप अपने बच्चों को पवित्र भोजन खिलाएं, प्यार भी बहुत दें। अब इनके साथ क्या होता है, दोनों डॉक्टर हैं, बहुत बिजी हैं, सवेरे खोल देते होंगे, रात को देर तक आएंगे, तो बच्चों से जैसे वो अलगाव सा हो जाता है माँ बाप का, तो बच्चे एक माँ बाप की पालना से, उनके प्यार से बहुत वंचित होते रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मिसिंग है युवकों के लिए, क्योंकि दोनों नौकरी पर हैं आजकल, इसलिए माँ बाप को थोड़ा सा ऐसा बैलेंस करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को थोड़ा समय दे सके, उनको प्यार दे सके, उनकी पालना कर सके, उनकी वो सुन भी सके। नहीं तो ऐसा होता है उनकी सुनने वाला कोई नहीं, किसी अपने साथी फ्रेंड को सुना दिया, उसने कुछ और ही बात कर दी, कोई मजाक उड़ाने लगेगा, कोई और भय पैदा करने लगेगा। तो हर एक फ्रेंड तो इतना योग्य नहीं होता ना जो सुनने में सक्षम हो और कुछ अच्छी राय दे। इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों की थोड़ी बात सुननी भी चाहिए, और घर में ऐसा कर लें कि रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार आधा एक घंटा घर में बैठ के अच्छा अच्छा माहौल बना दें।
बहुत अच्छा रहता है यदि घर में बैठ के भोजन करें साथ में। हफ्ते में एक बार क्यों रहता है जी, रोज की यदि बैठ के भोजन करें तो कितना अच्छा होगा कि बच्चे भी खुल पाएंगे और जो दिल की बातें हैं वो हो पाएंगे, और साथ ही ये जो सारी समस्याएं हैं, मुझे लगता है बहुत सारी समस्याएं बच्चों की दूर हो जाएंगी। एक विशेष बात रहता है, जैसे आपने कहा कि जिस बच्चे की बात आप कर रहे थे कि यहाँ वो 10 दिन रहा, वो भी बहुत अग्रेसिव था, लड़ता झगड़ता था या मार दिया करता था पेरेंट्स को, या पढ़ाई में रुचि नहीं थी, 10 दिन में वो पूरी तरह चेंज हो गया, तो ऐसा आपने क्या कराया उनसे? क्या वो बच्चे भी जो अभी ऐसी कंडीशन में हैं वो यहाँ माउंट आबू आए, उनके लिए कुछ ऐसे सेशन रखे जाएंगे, या फिर वहाँ रह के ही कुछ ऐसा अभ्यास करें कि वो ठीक हो जाए?
यहाँ के वातावरण में वो रहे, उसका फादर लेके आया था, उसके फादर का भाई हमारे यहाँ रहता है समर्पित पांडव भवन में, उसको वहीं उन्होंने रखा। मैंने कह दिया था तुम खूब सेवा भी करना, सब्जी में इसको लगा दो और खूब ये उठाए टोकरे और काम करे, उससे क्या मनुष्य की वो अंदर की जो बैड एनर्जी है ना वो यूज होके नष्ट हो जाती है। तो उसने वो भी किया, और उसका बाप जिसने ज्ञान योग अभी सीखा नहीं था उसने भी इन दिनों में सीख लिया बहुत अच्छा। वो कहीं विदेश में रहता है, कतर एक देश है, तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसको भी हमने कुछ चीज़ें सिखा दी, तुम इससे ऐसा व्यवहार करना, डांट डपटी नहीं, बहुत प्यार देना उसको सिखाना। और बच्चा इस माहौल में रहा, उसको भी ज्ञान योग तो था नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसने भी सीखा, मेडिटेशन रूम में बैठने लगा, तो वातावरण का प्रभाव पड़ा। लेकिन सभी तो यहाँ इस तरह नहीं आ सकते हैं, ऐसा तो यहाँ का नियम भी नहीं है, न ऐसी व्यवस्था रहती है। लेकिन हमारे सेवा केंद्र हैं, वहाँ ये बच्चे अगर जाते रहे वीक में एक दो बार भी, और वहाँ से अच्छी बातें सीखकर कुछ अच्छी प्रेरणाएं लेते रहें, और माँ बाप भी अपने घर का माहौल जैसा मैंने कहा स्पिरिचुअल बनाएं, तो ये बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी।
जी 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 प्रदेश जी, दूसरा मेल हमारे पास आया है, वो भी लगभग इसी से जुड़ता हुआ है। ये अनीता जी हैं हिम्मत नगर से, ये कहती हैं कि मेरा भतीजा है 10 साल का, वो लोग पुणे में रहते हैं, वो कहता है मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे मर जाना है। 10 साल का है, वो कहता है पढ़ाई नहीं करनी है, मर जाना है, आप मुझे मार डालो। इसके लिए मैं क्या करूँ? मैं ज्ञान मार्ग में 4 साल से हूँ, लेकिन मेरे जो भाई हैं वो अभी ज्ञान में नहीं जुड़े हुए हैं, विद्यालय से नहीं जुड़े हुए हैं, एक बड़ी समस्या है जिसका टेंशन उनको बहुत ज़्यादा है, कृपया बताएं कि क्या किया जा सकता है।
बिल्कुल, ऐसी चीज है कि किसी की समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या है।
जी जी,
कि बच्चा कह रहा है मुझे मार डालो, मैं पढ़ूंगा नहीं, तो और उसके वाइब्रेशंस भी नेगेटिव फैलते जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये पूर्व जन्मों का इफेक्ट है, इनका ऐसा संबंध रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है आपस में, उसने इनको कष्ट दिया है बहुत ज्यादा, उसको एक रिग्रेट की फीलिंग है, पश्चाताप की, इसलिए वो आत्मा छोटी आयु में बोल रही मैं मर जाऊंगा, मुझे मार डालो, क्योंकि उसको वहां रहना प्रिय नहीं लग रहा है। माँ बाप उसे प्यार देते होंगे लेकिन वो रिजेक्ट करता होगा, बिल्कुल हमने उसको देखा नहीं ना, हम जानते, पर ये लगता है वो उसको रिजेक्ट कर रहा होगा, उसके मन में एक दूसरी नेगेटिव फीलिंग जो पूर्व जन्म से चलती आ रही है वो रही होगी। इन्हें भी सोच लेना चाहिए कि 10-15-20 साल पहले इन्होंने किसी के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया था, न भी इनको याद आए तो पहली चीज इन्हें करनी है कि सवेरे 7 दिन तक केवल इस आत्मा को सामने इमर्ज करके इससे क्षमा याचना भी करें और इसको क्षमादान भी दें। तुमने कुछ कर दिया था, हम तुम्हें क्षमादान देते हैं, हमने तुम्हारे लिए कुछ किया, हम हाथ जोड़ के तुमसे क्षमा याचना करते हैं, तुम सुखी हो जाओ, बहुत खुश हो जाओ, तुम हमारे परिवार में बहुत सुखी रहो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारी पूरी पालना करेंगे। और ये क्योंकि ज्ञान में है, इसको 1 घंटा रोज कम से कम 3 मास इस बच्चे के लिए योगदान करना है, ताकि इसके मन में जो ये निगेटिविटी है, जो ये पूर्व जन्मों से लेकर आया है, जरूरी नहीं इससे पिछले जन्म की, उससे पिछले जन्म की हो सकती है, ये इसकी समाप्त हो जाए और इसका जीवन सुखी हो और ये परिवार बहुत अच्छा हो, क्योंकि माँ बाप को 10 साल का लड़का हो
ये कहें
और वो हो तो बेचारे।
तो ब्रदर जी, ये विद्यालय से नहीं जुड़े हैं इनके जो पेरेंट्स हैं, तो क्या ये क्षमा वाली बात ये कर सकते
हैं? क्षमा वाली बात तो ये कर ही सकते हैं, बाकी इनको जुड़ जाना चाहिए और मेडिटेशन सीखना चाहिए, क्योंकि इन चीजों की दवाई फाइनली तो मेडिटेशन ही है।
बिल्कुल प्रति जी, अगला मेल हमारे पास आया है। ये कहते हैं कि बचपन से ही मेरे पिता ने मेरे साथ बहुत डांट फटकार की। स्कूल में पढ़ने और खेलकूद में भी थोड़ा कमजोर होने के कारण साथियों से भी मुझे अपमानित होना पड़ता था। इस कारण मैं अपने जीवन में खुश नहीं रहा। मैं अब 2 साल से ब्रह्म कुमारीज में मेडिटेशन सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं खुशी व शांति की तलाश में था, परंतु अब भी मैं खुश नहीं रहता हूँ और मेरी एकाग्रता भी अच्छी नहीं हो पाती है। मैं एक अच्छा योगी बनना चाहता हूँ, प्रसन्न चित्त रहना चाहता हूँ, कृपया बताएं। इंदौर से प्रयाग जी हैं।
प्रयाग जी ने अपने मानस पटल पर अपने बाप की डांट अंकित की।
बचपन में जो चीजें होती हैं वो तो छप ही जाती
हैं, छप गई है इसके दिमाग पर, इसलिए इसको अपने फादर के लिए भी बहुत घृणात्मक दृष्टिकोण है। इसने मुझे बहुत दुख दिया है। भले ही बाप तो प्यार के लिए डांटते हैं, वो तो चाहते हैं हमारे बच्चे योग्य बने, उनकी भावना गलत नहीं होती, लेकिन बच्चे उस चीज को समझ नहीं पाते और बचपन से ही अपने को निराश, बहुत दुखी फील करने लगते हैं। अब इन्होंने राजयोग प्रारंभ कर दिया है, तो मैं इन्हें कहूंगा अपने फादर को सच्चे मन से क्षमादान दे दें। उसका प्यार था ये, उसकी डांट के पीछे उनका प्यार था, कहीं ना कहीं ये आत्मा भी उसके लिए जिम्मेदार थी, लेकिन अब उन्हें क्षमादान दें और उनके मन में एक गुड फीलिंग पैदा करें। वो मेरे गुड फ्रेंड थे, वो मेरे बहुत शुभ चिंतक थे, आई लव हिम, ही इज माई लविंग फादर, ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प करें रोज सवेरे उठ के, तो इनकी खुशी लौट आएगी। और मेडिटेशन ये कर ही रहे हैं, इस ये करने से इनका मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होगा। अन्यथा ये ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को विचलित करती हैं अंदर से, तो ये चीज करें और रोज सवेरे उठ के अच्छा मेडिटेशन करें। अगर ये पढ़ते हैं तो अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दें और अब ऐसा कर दें कि माँ बाप पुनः इनको बहुत प्यार करने लगे।
बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ब्रता जी, इनके मन में भी जो एक घृणा का भाव है वो दूर हो, क्योंकि 2 साल से मेडिटेशन करने के बाद भी अब तक वो जमा हुआ है, जल्दी से दूर हो और इनका मन प्रसन्न चित हो, ऐसी हमारी भी कामना रहेगी। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जैसे ब्रता जी अंत में कह रहे थे कि माता पिता सचमुच बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, हमारी भविष्य के लिए चिंतित होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा भविष्य बहुत उज्ज्वल हो, इसीलिए कई बार वो डांट फटकार का सहारा लेते हैं या कड़े शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। यद्यपि करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक अलग विषय है, कैसे बोलने चाहिए इस पर एक बड़ी चर्चा हो सकती है, जो ब्रता जी हमेशा प्रकाश देते रहते हैं। लेकिन ये सच बात है कि जब हमारे बड़े कुछ कहते हैं तो हमारे हित में होता है, उस समय हम उस चीज़ को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, ये एक अलग बात है। एक बार मैं अपने मित्रों के साथ था और वहाँ से मैं कोई एक ऐसा शब्द सीख के आ गया जिसका अर्थ मुझे भी नहीं पता था। आजकल कई डबल मीनिंग वर्ड होते हैं। अब जब मेरी बहन के साथ मेरी लड़ाई हुई तो मैंने वही शब्द इस्तेमाल कर दिया अपनी बहन पे, तो पिताजी ने बहुत जोर से मुझे डांटा। मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने मुझे क्यों डांटा, लेकिन मैं इतना तो समझता था कि पिताजी यदि कुछ कहेंगे, डांटेंगे, तो अच्छे के लिए कहेंगे, शायद मैंने कुछ गलत किया होगा। तब मैं नहीं जानता था कि उस शब्द का मीनिंग क्या है। जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि उस शब्द का क्या अर्थ था और पिताजी ने मुझे क्यों डांटा था। तो ऐसे जब हमारे बड़े कुछ कहते हैं तो सचमुच उसके पीछे कुछ भाव होता है। हम हमेशा ये चर्चा करते हैं कि उन्होंने दुनिया को देखा है, जीवन को समझा है, और यदि वो हमें कुछ सिखाते हैं उसका स्वरूप भले डांट वाला स्वरूप हो तो जरूर उसमें कल्याण का भाव होता है। तो ये भाव जरूर हम अपने अंदर रखें अपने पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने हमारे अच्छे के लिए ही किया है, उन्होंने हमें जन्म दिया है तो जरूर हमारी भलाई ही तो चाहेंगे ना। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है कि माता पिता से ज्यादा शुभचिंतक संसार में और कोई दूसरा हमारा हो ही नहीं सकता। इसीलिए यदि उन्होंने हमारे साथ कुछ ऐसा किया भी है, कोई बात नहीं, हमें बुरा लगा हो, दिल से उस चीज को हम निकालें, अच्छे भाव पैदा करें जैसे भ्राता जी कह रहे थे, तो जीवन भी खुशहाल होगा और साथ ही हमारी आगे की जो यात्रा है बहुत सुखद होगी। इस पे विचार जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार में कई बार रिश्ते इसके कारण बहुत ज्यादा कड़वाहट से भर जाते हैं। हमें रिश्तों को मिठास से भरना है और मिठास से भरने के लिए योग हमें बहुत ज्यादा मदद करता है, हमारी शुभ भावना बहुत मदद करती है। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में, आगे भी इस चर्चा को प्राता जी के साथ जारी रखेंगे। नमस्कार।